أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، میرے پیارے دوستوں، ساتھیوں، آپ کو ایک بار پھر میرا پیار بھرا سلام. آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں احکام کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. ہم نے ابھی پچھلی ویڈیو میں اجتہاد اور تقلید سے سمبندھت مسئلوں پر بات چیت کی، ان کا ادھیئن کیا، اور یہ پریتن کیا کہ اس سے سمبندھت پرشنوں کا اتر دیا جائے. آج تقلید ایک ایسا مسئلہ ہے، دوسرے کا انوسرن کرنا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر بہت دشپرچار کیا جا رہا ہے، اور یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ تقلید وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر عقل نہیں ہوتی ہے. تقلید کرنا بیوقوفی ہے، تقلید کرنا، دوسرے کا انوسرن کرنا کسی مجتہد کے بتائے ہوئے فتوے کے انوروپ جینا، اس کے بتائے ہوئے فتوے کے انوروپ کاریہ کرنا، اس کے بتائے ہوئے فتوے کے انوروپ اپنے جیون کا سنچالن کرنا، یہ مورکھتا ہے. تو اس کے اتر میں جہاں بہت سے جوابات دیے گئے ہیں، اتر دیے گئے ہیں، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ ایشور اپنی پوتر کتاب قرآن میں اس پرکار ارشاد فرما رہا ہے، فص الو اہل ذکر ان کن تم لا تعلمون، کہ اہل ذکر سے سوال کرو، ان سے پرشن کرو، ان سے پوچھو، ان کن تم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو، اگر تمہارے پاس گیان نہیں ہے، اگر تمہارے پاس جانکاری کمی ہے. یعنی کیا مطلب؟ ایشور نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ تم دنیاوی کاریوں میں دوسروں سے رائے مانگو، ان کا مشورہ لو، بلکہ ہر وہ کاریہ، ہر وہ وشے، ہر وہ فیلڈ جس کے بارے میں تم کو گیان نہیں ہے، اگر اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہو تو بدھی کا تقاضا یہ ہے، عقل بندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس سے سمبندھت جانکار کی صلاح اوش لے. ہم اپنے جیون میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا خدا نخواستہ بچہ بیمار پڑ گیا تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دکھانے کے لیے، وہ خود سے دوا نہیں دیتا ہے. اگر کوئی انسان بلڈنگ بنانا چاہتا ہے، گھر بنانا چاہتا ہے، تو وہ انجینئر سے صلاح و مشورہ لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اس فیلڈ میں ہم کو اتنی جانکاری نہیں ہے جتنی جانکاری ان کو ہے. بیماری کے بارے میں اتنا نہیں جانتا ہوں جتنا ایک ڈاکٹر جانتا ہے، گھر بنانے کے بارے میں اتنا نہیں جانتا ہوں جتنا ایک انجینئر جانتا ہے. اب اگر دنیاوی کاریوں میں دوسرے کا انوسرن کیا جائے، جانکار کی صلاح لی جائے، تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ بہت اچھا کام ہے، یہ صحیح ہے، ایسا کرنا چاہیے، بدھی یہی کہتی ہے انسان کی، عقل یہی کہتی ہے انسان کی، یہ کاریہ ہونا چاہیے. لیکن کتنے آشچر کی بات ہے، یہی کاریہ جب دھارمک معاملوں میں آتے ہیں، جب دین کے معاملے میں آتے ہیں، اسلام کے معاملے میں آتے ہیں، تو انسان پلٹ کے کہہ دیتا ہے کہ مورکھتا ہے. جب کوئی انسان، کوئی مکلف، کوئی وہ مسلمان ویکتی جو مسئلوں کے بارے میں گیان نہیں رکھتا ہے، جب وہ تقلید کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو ہر انسان یہ کہتا ہے کہ یہ مورکھتا ہے، ہم کو دوسرے کی تقلید نہیں کرنا چاہیے. کتنے آشچر کی بات ہے، واقعی سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے. تو ہم پچھلے ویڈیو میں اپنے یہ بتا رہے تھے کہ اگر کوئی انسان کسی مجتہد کی تقلید یہ کر رہا ہے، اس کا انوسرن کر رہا ہے، مجتہد مر چکا ہے، تو اب اس کا دائتو کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے. تو فتووں میں جو چیز پرسدھ ہے، جو چیز مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان अपने पुराने मुज्तहिद के फतवों पर अमल करना चाहता है, उसके अनुसार कार्य करना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि जो मुज्तहिद जीवित है पहले उससे अनुमति ले, उसके बाद उसके अनुसार वो कार्य कर सकता है। इस बारे में मस्जिद आली कद्र महान धर्म गुरु हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान किसी मुज्तहिद की तकलीद कर रहा था, उसका अनुसरण कर रहा था, अब वो मुज्तहिद इस दुनिया से चला गया है, स्वर्गवासी हो गया है, तो अगर उसको इस बात का पता था कि वो मुज्तहिद आलम था, सबसे ज़्यादा ज्ञानी था, तो वो उसी मरे हुए मुज्तहिद की तकलीद पर बाकी रह सकता है, उसी का अनुसरण करता रह सकता है। लेकिन अगर वो मुज्तहिद ऐसा था कि वो आलम नहीं था, लेकिन आज के युग में जो जीवित मुज्तहिद हैं ज्ञान के मामले में उनके बराबर था, तब भी उसको ये अधिकार है कि वो अपने पुराने मुज्तहिद की तकलीद पर बाकी रह सके। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये है कि अगर कोई इंसान किसी स्वर्गवासी मुज्तहिद के मसलों के अनुसार कार्य कर रहा है, उसकी तकलीद कर रहा है, तो वो मसले जो उसके ज़माने में पैदा होते हैं, नए मसले पैदा होते हैं, या वो मसले जिनके बारे में उस मुज्तहिद ने कोई फतवा नहीं दिया है, कोई आदेश नहीं दिया है, उसके लिए आवश्यक है कि वो उन मसलों में नए मुज्तहिद का अनुसरण करें। जैसे कि एक मिसाल दूं, आज के युग की मिसाल है, अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक मिसाल दे दूं कि जैसे अगर कोई इंसान किसी ऐसे मुज्तहिद की तकलीद कर रहा था, उसका अनुसरण कर रहा था, जिसके युग में इंटरनेट नहीं था, या इंटरनेट इतना फैला हुआ नहीं था कि उसके बारे में नए नए मसले पैदा हों। अब आज के युग में इंटरनेट दुनिया के कोने कोने में पहुंचा हुआ है और उसके बारे में नए नए मसले पैदा हो रहे हैं। अब अगर ये मसला पैदा हो जाए कि इंटरनेट के माध्यम से किसी अजनबी या नामहरम के साथ चैट करने का मसला क्या है, तो अगर उस मुज्तहिद ने कोई उस बारे में फतवा नहीं दिया था, तो उसको चाहिए कि इस मसले में नए मुज्तहिद का अनुसरण करे, उस मुज्तहिद का अनुसरण करे जो आज के युग में है, जीवित है, उसने उस बारे में मसला दे रखा है, फतवा दे रखा है। तो हमने ये सब तो बता दिया कि इंसान के जीवन में तकलीद करना ज़रूरी है, अगर इंसान बिना तकलीद के अपने कार्य अंजाम दे रहे तो उसके किसी भी कोई भी कार्य स्वीकार्य नहीं है। अब शायद कोई ये प्रश्न करे कि हम कैसे पहचाने कि कोई इंसान मुज्तहिद है या आलम है या नहीं है, हमको कैसे पता चले कोई इंसान दुनिया के दूसरे कोने में बैठा है, उसको कैसे मालूम हो कि इस वक्त मुज्तहिद कौन है, हमको किसकी तकलीद करना चाहिए और किसके अनुसार, किसका अनुसरण करना चाहिए और किसके फतवे के अनुसार हमको कार्य करने चाहिए। तो हमारे उलमा ने, हमारे विद्वानों ने इसके तीन रास्ते बयान किए हैं कि अगर हमें पहचानना है कि कोई इंसान मुज्तहिद है या नहीं, कोई इंसान आलम है या नहीं, तो उसके तीन रास्ते हैं। पहला तो ये कि इंसान को खुद इतनी जानकारी हो, खुद इतना ज्ञान रखता हो कि जिसके माध्यम से वो सामने वाले इंसान का इम्तिहान ले सके, उसकी परीक्षा ले सके, जिसके बारे में कहा था अहले खिबरा हो। अगर ये कर सकता हो तो वो खुद करे, और अगर करने के बाद उसको यकीन हो गया कि ये इंसान मुज्तहिद है, तो उसके अनुसार, उसके फतवे के अनुसार अपने सारे कार्य अंजाम दे, वो जो कहता है उस पर अमल करे, उसका अनुसरण करता रहे। दूसरी बात यह है कि अगर इंसान खुद इतना जानकार नहीं था, उसको इतना पता नहीं था, वो इतना ज्ञान नहीं रखता था, तो दूसरा रास्ता ये है कि दो आदिल लोग, दो सच्चे लोग, जिनके बारे में झूठ की संभावना न पाई जाती हो, दो ऐसे लोग आकर गवाही दे कि हाँ फला व्यक्ति मुज्तहिद है। अब अगर दो लोगों ने, ऐसे लोगों ने गवाही दे दी, तो उस व्यक्ति के इज्तिहाद, उसकी आलमियत साबित हो जाएगी और इंसान उसके फतवे के आधार पर कार्य कर सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त है, शर्त यह है कि अगर दो आदिल आदमी एक बात आके कह रहे हैं कि फला शख्स मुज्तहिद है, फला शख्स आलम है, तो उसके उलट ऐसा ना हो कि दो आदिल और आके ये कहें नहीं फला शख्स मुज्तहिद नहीं है, फला शख्स आलम नहीं है। अब अगर ऐसा हो गया, यानी दो लोगों ने कहा कि आदिल है, दो लोगों ने कहा नहीं आदिल नहीं है, तो इस सूरत में उसकी आलमियत, उसका इज्तिहाद साबित नहीं होगा। और तीसरा रास्ता ये है कि इंसान अपने समाज में देखे, हो सक कोई इंसान बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, बहुत मशहूर हो जाता है इस मामले की में कि वो आलम है, इस मामले में कि वो मुज्तहिद है। अगर कोई इंसान आलमियत और इज्तिहाद के बारे में प्रसिद्ध हो, पूरे समाज में ये मशहूर हो कि वह इंसान आलम है और वह इंसान मुज्तहिद है, और अगर इस प्रसिद्धि और इस शोहरत के वजह से इंसान को उसकी आलमियत और उसके इज्तिहाद का यकीन हो जाए, तो वह इंसान मुज्तहिद कहलाएगा और उसके फतवों के अनुसार कार्य किया जा सकता है, उसका अनुसरण किया जा सकता है। उसके बाद एक मसला ये आता है कि इंसान के लिए आवश्यक ये है कि अपने जीवन के हर स्तर पर, वो जिस फील्ड में है, जिस स्तर पर है, उस स्तर के आधार पर उसके लिए आवश्यक ये है कि हमेशा इस बात की कोशिश करता रहे, हमेशा इस बात का प्रयत्न करता रहे, ताकि उसको ये पता चल सके कि वास्तविक मुज्तहिद कौन है, वास्तविक आलम कौन है। अब यहाँ पर एक सवाल, एक और शाखा निकलती है यहीं से कि अगर कोई इंसान किसी मुज्तहिद की तक़लीद कर रहा है और वो मुज्तहिद किसी मसले में आलम है और किसी मसले में आलम नहीं है, यानी क्या मतलब, इस्लामी कानून कई भागों में बटे हुए हैं, मसलन इबादात हैं, मामलात हैं और इसी तरह के दूसरी चीज़ें। अगर कोई एक इंसान इबादात के मामले में सबसे ज्ञानी है लेकिन मामलात के बारे में सबसे ज्ञानी नहीं है, व्यापार के मसलों को सबसे ज़्यादा ज्ञानी नहीं, व्यापार के मसलों में इज्तिहाद नहीं रखता है, तो जो इंसान अनुसरण कर रहा है उसके लिए आवश्यक ये है कि वो इबादात के मामले में उस मुज्तहिद के फतवों पर अमल करे, उस मुज्तहिद के फतवों का अनुसरण करे जो उस मामले में आलम है, और मामलात के मसले में उस मुज्तहिद के फतवों का अनुसरण करे जो मामलात के बारे में सबसे ज़्यादा जानता है, सबसे ज़्यादा ज्ञानी है। और इसी तरह का कोई कभी ऐसा हो जाए कि दो तीन मुज्तहिद हैं और हर मामले में बिल्कुल बराबर है, उनका ज्ञान बराबर है, उनका तकवा बराबर है, उनका तमाम चीज़ें बराबर हैं, तो ऐसे समय में जो इंसान है, जो मुकल्लफ है, उसको ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो जिसकी भी चाहे तकलीद कर सकता है, और ये भी कर सकता है कि एक मसले में किसी की तकलीद करे, दूसरे में किसी की तकलीद करे, तीसरे में किसी की तकलीद। क्यों? क्योंकि ये तमाम के तमाम हज़रात, ये तमाम महान उलमा ज्ञान के एतबार से सब बराबर हैं, इसलिए उनके फ़तवे भी बराबर हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।